الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. ہدن للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدا، اور روشن نشانیاں ہدایت میں سے. والفرقان، اور اس میں فرق کرنے والا یہ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی اس مہینے کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 185 ہے، جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. رمضان کی آمد آمد ہے، مگر اس بار رمضان بہت مختلف ہے. ویسا رمضان نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا. آج کی تاریخ میں ہمیں مسجد میں یہ لیکچر کرنا تھا، لیکن مساجد بند ہونے کی وجہ سے آن لائن ہی ہو رہا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت مساجد میں بھی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں رمضان المبارک کی، قالین دھل رہے ہوتے ہیں، افطاریوں کی ڈیٹس فائنل ہو رہی ہوتی ہیں، اسپیکرز اور جن آرگنائزیشنز نے بھی جس دن فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، جمعے کے خطبے رمضان پہ دیے جا رہے ہوتے ہیں، دورہ قرآن بعض جگہ شروع ہو جاتے ہیں، نہیں تو رمضان المبارک کے دروس ہو رہے ہوتے ہیں. مگر اس بار ویرانی ہے، گلیوں میں وحشت ہے، سنسانی ہے. مسجدوں میں جہاں جمعے کے دن تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہاں ہو کا عالم ہے. بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ کاش اس وقت رمضان نہ آتا اور کسی اور وقت آتا تاکہ ہم بہتر فائدہ اٹھا سکتے، کیونکہ ہم اس دفعہ تراویح نہیں پڑھ سکیں گے، ہم اس دفعہ مساجد میں افطاریاں نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے گھروں میں بھی افطار نہیں کرا سکیں گے لوگوں کو، جماعت سے نماز مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی، اعتکاف نہیں کیا جائے گا. جو فنڈ ریزنگز ہوتی تھیں جن سے ہم بڑے تنگ آتے تھے وہ بھی نہیں ہوں گی. جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ رمضان میں عمرہ کریں گے تو عمرہ بھی بند ہو گیا. اسی طرح ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے تھے، وہ ایک صدقہ تھا، وہ نیکی بھی ہاتھ سے گئی. ہاتھ ملانے سے، مسلمان جب مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس سے بھی گئے. تو شاید یہ ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، اور یہ سب وقت گزر جاتا اور اس کے بعد ہم یہ مہینہ دیکھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، مشکل کے ساتھ ہی آسانی. اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ ایسی حالت میں دیا کہ اب ابھی تک ہم زندہ ہیں، ہمیں موت نہیں آئی، ابھی ہم صحت سے ہیں، ہم بیمار نہیں ہوئے، ہمارے سروں پر چھت ہے، ہم ہوملیس نہیں ہوئے. مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے مگر ہمارے گھر ابھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کہیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے ابھی بند نہیں کیے. دکھ تو بہت ہے، تکلیف تو بہت ہے کہ کیسا رمضان آ رہا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں جس کو پلے باندھ لیں، کہ شاید اس سے زیادہ ہمیں رمضان کی کبھی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے. ہم چاہتے ہیں رمضان آ جائے، क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ठीक है, पहले भी जरूरत थी मगर आज बहुत ज्यादा है, कि इसको हम आता हुआ देख के ऐसे लग रहा है जैसे शायद अल्लाह की रहमत की बदलियां रमजान की सूरत में हमारे पर साया करते और हम गुनाहगारों की बख्शिश हो जाए। हो सकता है कि ये रमजान ही हो जिसमें हम तौबा करके अल्लाह को मना सके, हो सकता है ये रमजान ही हो जिसमें हम अपने गुनाहों की कालक को दूर कर सके, हो सकता है ये रमजान हो जिसमें हम अल्लाह के प्यारे बन सके। तो इससे ज्यादा हमें, आज से ज्यादा कभी रमजान की इतनी जरूरत नहीं थी। इस दफा बहुत ज्यादा हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ये देखना नसीब कर देना, ईमान की सलामती के साथ, सेहत और जिंदगी के साथ, आफियत के साथ, कि हर दिन जो है उसका कोई पता नहीं है कि उसमें क्या हो जाए। एक एक लम्हा जो है वो इंसान रिस्क में है, पहले भी था लेकिन अब अल्लाह दिखा रहा है, अब फील हो रहा है, अल्लाह बता रहा है। याद रखिए, अल्लाह ताला के पैगंबर तो अब दुनिया में नहीं आएंगे मगर अल्लाह ताला अपने मैसेज जो है किसी ना किसी सूरत में हम तक पहुंचाता है। हम इस बहस को नहीं करते कि ये क्या है, ये अजाब है या ये आजमाइश है या ये क्या है क्या नहीं है, मगर ये बात जरूर है कि अल्लाह हमें कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, और अगर हम समझ जाए तो उसमें हमारे लिए आफियत है, और अगर हम ना समझे तो उससे बड़ी बला और उससे भी बड़ी बला आ सकती है। तो कैसे अब ये रमजान जो आ रहा है उसको हम कैसे गुजारें, क्या करें इसमें कि अल्लाह राजी हो जाए। सबको मनाना आता है ना, आपके घर में कोई नाराज हो जाए उसको मनाना, कोई प्यारा हो उसको मनाना, कैसे मनाया जाता है? उसके पसंद के काम करके कैसे मनाया जाता है? रूठे को उसके आगे बिछ के, उसकी खुशामदें करके, उसकी मिन्नतें करके, यही करना इस रमजान में। माना हम अफ्तारियां नहीं कर सकते, माना हम तरावी नहीं पढ़ सकते, माना हम ये सब काम नहीं कर सकते जो पहले करते थे, मगर गमगीन ना हो, वो रब इतना रहीम है कि उसने अभी हमें छोटा सा झटका दिया, ज्यादा नहीं दिया, और हमारी चीखें निकल गई, लिटरली हमारी चीखें निकल गई। इससे पहले कि ज्यादा बड़ा कोई झटका आए, हमें अपने आप को तैयार करना है, आमादा करना है इस बात पर कि अल्लाह की माननी है, और रमजान का महीना यही सिखाता है। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, तो पता चलता है कि शहरु रमदान ये सिर्फ एक महीने का नाम पूरे कुरआन में है और किसी महीने का नाम कुरआन में नहीं आया। इससे पता चला ये महीना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा अहम होगा, कितना अल्लाह के हाँ ये प्यारा होगा कि अल्लाह ने इसका नाम कुरान पाक में, एक जगह नहीं और जगह भी आता है, अल्लाह ताला ने इसको नाम के साथ मेंशन किया और इसको जोड़ा किस चीज के साथ? रोजे के साथ नहीं, सबसे पहले शहरो रमदान को जोड़ा कुरान के साथ। रोजे की बात बाद में आई क्योंकि कुरान का नजूल इस महीने में हुआ, और कुरान क्या है? अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी जो उसने जमीन की तरफ लटका दी है कि इस रस्सी को पकड़ लो और अल्लाह से जुड़ जाओ। जो हम में से इस हालात में अल्लाह से जुड़ना चाहता है, उसके लिए कुरान से ज्यादा और कोई चीज नहीं है जो मुअसर। यानी इसको थाम के आप अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक वापस बहाल कर सकते। कुराने पाक अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है और ये हमारे पास है, अभी शुक्र है। मस्जिद चली गई लेकिन कुरान तो है, इसका साथ तो है। इससे पहले कि कुरान उठा लिया जाए, क्योंकि कुर्बे कयामत में कुरान भी उठा लिया जाएगा, इससे पहले कि ये उठा लिया जाए, इस नेमत की कदर जानी है। और कुरान इसका नाम एक और है, जिक्र। जिक्र, जिक्र क्या होता है? याद दिहानी। एक माना इसका क्या हुआ जिक्र का, कि जिसका इंसान को इल्म था लेकिन वो भूल गया था तो उसको याद दिहानी कराता है। दूसरा इसका माना जिक्र का क्या है, कि जो मालूम तो था, भूला नहीं था, मगर उसको अहमियत नहीं दी जाती थी, वो है जिक्र। और तीसरा माना वो है कि जो हिसाब किताब के दिन की याद दिहानी करा दे, वो जिक्र है। तो कुराने पाक हमें वो भूला हुआ सबक याद कराता है, अल्लाह को भूल गए थे, कुरान हमें अल्लाह की याद दिलाता है, हिसाब किताब की याद दिहानी कराता है जिसको हम भूल चुके थे। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए हमें अपनी तरफ बुलाता है। जो कुरान से जुड़ जाए, जो इससे अपना ताल्लुक मजबूत कर ले इस महीने में, वो खुशनसीब है। और हमारे असलाफ तो इस महीने को गनीमत जानते थे, कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ के। इमाम मालिक रमजान में हदीस की किरात बंद कर देते थे, अहले इल्म की मजालिस से दूर हो जाते थे, कुरान के अलावा तो वो कोई और काम करते ही नहीं थे। सुफियान सॉरी ताबी हैं, वो भी सारी बातें छोड़ के कुरान की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे, कुरान को टाइम देते थे। तो ये वक्त देखें, हम इतकाफ तो नहीं कर सकते, लेकिन इस रमजान में अल्लाह ने हमें नेचुरली इतकाफ दे दिया। जाहिर है ना, हमने कहीं जाना है, ना आना है, ना किसी से मिलना है, ना जुलना है। अगर हमने अपने फोन बंद कर देना तो हम एक नेचुरल इतकाफ में हैं, हम घरों में बैठे में, और ऐसा मौका कभी और नहीं हमें मिलता कि हम सिक्लूड हो जाएं। इस रमजान में अल्लाह ने हमें सिक्लूड कर दिया कि सारों से ताल्लुक तोड़ के सिर्फ अल्लाह से लॉ लगाओ, नेचुरली कर दिया। वरना आप देखें, हम कहीं जाते, कहीं आते, किसी की बात सुनते, किसी से बात करते, वही बातें दिमाग में घूमती रहती, वही बातें नमाजों में याद आती। लेकिन अल्लाह ताला ने इस वक्त सबसे ही काट दिया कि सबसे कट के मेरे हो जाओ बस। इस रमजान में अल्लाह ताला ने हमें सबको मौका दे दिया कि अकेले अकेले फर्दन फर्दन मेरे से बात करो। जो बीमार है वो भी अकेला है, जो इस वक्त मर रहा है वो भी अकेला है, जो उस वक्त सही सलामत है वो भी अकेला है, सब अकेले हैं। और जो अकेला अल्लाह के सामने रोएगा, सोचिए अल्लाह को कितना प्यारा लगेगा कि इंसान अपनी बेबसी दिखाए अल्लाह को, इंसान अल्लाह को मनाने के लिए अपने आप को झुका दे। आप देखिए, नबी अलैहिस्सलाम तो जब रमजान शुरू होता था ना, तो आपका क्या हाल होता था, रंग बदल जाता था, नमाजों में इजाफा हो जाता था, दुआओं में आजी आ जाती थी, और खौफ का गलबा हो जाता था, खौफ का गलबा हो जाता था। उनका ये नहीं था कि वो बेखौफ हो जाए। इससे ज्यादा हमें कौन सा वक्त होगा जिसमें हम अल्लाह के खौफ से दब जाएं, आजी दिखाएं, इससे ज्यादा क्या वक्त हो सकता है। तो ये तो वाकई रमजान का आना और ऐसे वक्त में आना हमें ये बता रहा है कि हम झुक जाएं। और अल्लाह ने माहौल ऐसा बना दिया, सब तरफ से हमें तोड़ दिया, सब तरफ से हमारे ताल्लुकात को खत्म कर दिया। देखे, जब सब कर रहे थे तब तो करना आसान है, सब तरह भी पड़ रहे हैं, हम भी झुक गए, हम भी उठ गए, हम भी बैठ गए,
हमने भी दुआएं मांग ली, सब जा रहे हैं तो हम भी चले गए।
अब पता चलेगा ना कि कौन क्या करता है, कौन कितना करता है। सब दौरे कुरान के लिए खवातीन जमा हो गई तो हम भी जमा हो गए वहां पे एक घर में। सब जा रहे थे तो हमने भी प्रोग्राम बना लिया। अब देखते हैं कौन कितना करने वाला। अल्लाह आजमाता है ना, अल्लाह ताला ने देखना है कि तुम क्या हर हाल में अल्लाह के बनते हो, हर हाल में अल्लाह की इबादत करते हो, या सिर्फ देखा देखी करते हो कि जब माहौल होगा, जब साजगार होंगी चीजें, जब हालात अच्छे होंगे तभी हम करते हैं, वरना देखे हम तो बहुत डिप्रेस हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। नहीं, एक मोमिन जो होता है ना, वो हालात कुछ भी हो, हालात अच्छे हैं या बुरे, देखिए अल्लाह ताला ने जो मुत्तकीन की सिफात बताई, अल्लदीन युन्फिकून फिस्सराई वद्दराई, वो देखिए जब खर्च करते हैं ना खुशी में भी करते हैं, जब आसानी हो तब भी करते हैं, और जब तकलीफ हो तंगदस्ती हो तब भी करते हैं। अल्लाह ताला तो यही देखता है ना, अच्छे दिन थे तब तो तुमने अल्लाह की इबादतें की, खूब मस्जिदों को भरा, अब जब मुश्किल हालात है तो तब क्या करते हो। मेरी फ्रेंड जाती है मस्जिद, अगर मैं ना गई तो वो पूछेगी कि क्यों नहीं आई। चलो उस वक्त तो जाना ही था, 20 ना सही 8 ही पढ़ के आ गई तरावी। अब पता चलेगा घर में 8 भी पढ़ती हूँ कि नहीं। अल्लाह ताला ने सारी शो ऑफ खत्म कर दी। जो मस्जिद जाता था दूसरे से पूछता था, अच्छा आप 8 पढ़ेंगी, मैं तो 20 पढ़ के जाती हूँ। अल्लाह ने वो भी खत्म कर दिया, सब शो ऑफ खत्म। रमजान से पहले ही तैयारी हो रही होती थी, कौन से कपड़े पहन के जाएंगे दौरा कुरान पे, कौन से बाए पहन के जाएंगे मस्जिद में, कौन सा स्कार्फ पहनूंगी, किस दिन के लिए कौन सा जोड़ा है, वो भी सब खत्म हो गया। मैंने अफतारी की तो आपने भी कर ली, आपने की तो किसी और ने भी कर ली। अब क्या करें, फलाने हमें बुलाया था तो अदले का बदला भी तो करना है, हमें भी बुलाना पड़ेगा। ये अफतारियां हो रही थी, अल्लाह ने वो भी खत्म कर दी। अब जिसको अफतारी करानी होगी वो वहां कराएगा जहां किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने अफतारी करा दी। अब जिसको नमाजें पढ़नी होगी और कयाम करना होगा, वो अकेले में अल्लाह के आगे खड़ा होगा कि वो होगा और उसका रब होगा, और किसी को नहीं पता वो 8 पढ़ता है, 12 पढ़ता है, 16 पढ़ता है, 20 पढ़ता है, कितनी पढ़ता है, या पढ़ता ही नहीं है। अल्लाह ने ये सब चीजें खत्म कर दी। कुरान पाक के साथ जो ताल्लुक है ना, ये हमें अल्लाह के साथ जोड़ने में इतना मुफीद है। अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक के बारे में कुरान पाक में फरमाया, जो ये पहली हम बात कर रहे थे उसकी तरफ ही वापस आ रहे हैं। सूरह फातिर में एक आयत है बहुत ही प्यारी है, जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं ना इस वक्त, वो खुश हो जाए इसको सुन के, और जो आज तक कुरान से नहीं जुड़े वो उसकी हिर्स करें, वो सोचें कि ये रमजान हम इसके लिए, कुरान के लिए हम निकालेंगे और कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक रखेंगे कि उसके बाद आखिरी सांस तक ही ताल्लुक ना टूटे। जानते हैं कि कितनी प्यारी आयत है सूरह फातिर में, अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत नंबर 32 है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लदीन, फिर हमने वारिस बनाया किताब का उन लोगों को, सस्तफईना, जिनको हमने चुन लिया, मिन इबादीना, अपने बंदों में से हमने इस किताब का वारिस किसको बनाया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ने अपनी इस किताब का वारिस बनाया अपने बंदों में से, खास बंदों को जिनको अल्लाह ने चुन लिया, अल्लाह ने उनका चुनाव किया। सुभान अल्लाह, इस्तफईना, नबी अलैहिस्सलाम का एक नाम मुस्तफा है, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया, फिर उम्मते मुहम्मदी में से अल्लाह ताला ने चूज किए कुछ लोग जिनको अल्लाह फरमाता है इबादीना, हमारे बंदों में से। वैसे तो सभी अल्लाह के बंदे, लेकिन जिनको अल्लाह कह देना इबादी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया अब्दी, तो वैसे सब अल्लाह के बंदे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये आ गया तो खास बात हो गई। इसको कहते हैं निस्बते तशरीफी,
ऑनर देना किसी को, जब अल्लाह ताला फरमाता है ये हमारे बंदे हैं, तो जैसे ऐसे ही है कि अल्लाह ताला खाना काबा को फरमाता है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, तो सारे घर अल्लाह के हैं, हमारे तो ये घर भी नहीं है, भी अल्लाह का ही है, सब कुछ अल्लाह का है, वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द। तो फिर बैतुल्लाह क्यों कहा गया? इसलिए कि अल्लाह ने उस जगह को इज्जत दी। इसी तरह कुछ बंदों को अल्लाह इतनी इज्जत देता है, आपको फरमाते हैं ये मेरे बंदे हैं, इनको मैंने चुन लिया है किसके लिए, इस किताब के वारिस बनने के लिए। इनमें कैसे लोग हैं? तीन तरह के लोग बताए इनमें, इन वारिसों में ना तीन तरह के लोग हैं। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, कुछ इनमें से ऐसी हैं जो अपने नफ्सों पे जुल्म करने वाले गुनाहगार हैं, यानी गुनाहगार भी हैं वो भी किताब के वारसों में से हैं। वह मिन हूँ मुक्तसिदर, उनमें कुछ दरमियाने भी हैं और उनमें कुछ साबिकुम बिल खैरात भी हैं, नेकियों में सबकत ले जाने वाले। आप देखें तीन ग्रोहों का जिक्र आया, जिनमें सबसे पहले उनका जिक्र आया जो अपने नफ्सों पे जुल्म करने वाले। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने गुनाहगारों को भी अपने लिए फरमाया कि ये भी मेरे बंदे हैं, ये भी मेरे ही हैं। ये काबिले तवज्जो बात है ना, सबसे पहले गुनाहगारों का जिक्र किया। नाफरमान हुए तो क्या हुआ, मगर इनको भी अल्लाह ने किताब के वारिसों में रखा। इसमें इशारा ये है कि जिसको अल्लाह ने इल्म के रास्ते के लिए, कुरान के लिए, कुरान की तालीम के लिए मुंतखब कर लिया ना, वो बावजूद इसके कि वो गुनाहगार ही क्यों नहीं है, वो गुनाहों में घिरा हुआ है, इसके बावजूद अल्लाह ने उसको ओन किया है, अपना बनाया है, उसका पहले जिक्र किया है कि उसको महसूस ना हो कि हम तो ठीक है इल्म के रास्ते पे, कुरान के रास्ते पे आ तो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर तो बड़े गुनाह हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो जालिमुन ली नफ्सी है उनको भी हमने चूज किया इस किताब के वारिस होने के लिए। तो जिसको अल्लाह ताला इस किताब के इल्म के लिए चूज कर ले ना, बहुत बड़ी की खुशकिस्मती है उसके लिए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम के लिए फरमाया था वस्ताना आतू कल ली नफ्सी, ए मूसा अल्लाह ताला ने आपको अपने लिए बनाया है, कितनी मोहब्बत का अंदाज है। तो अल्लाह ताला जिसको चूज कर ले अपने लिए, अपने किताब के लिए, इससे भी बड़ा कोई शर्फ हो सकता है? और उनके पास कोई पहले से डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं कि अल्लाह ने उनको चुन लिया। बस फरमाया अल्लाह ताला का इंतखाब है, उसने अपने बंदों में से कुछ को चुन लिया है। देखिए हदीस में आता है ना, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भलाई का इरादा करता है उसको खैर के लिए कारामत बना देता है, खैर करने वाला बना देता है। तो ये रमजान हमने शऊरी तौर पे कुरान पाक की के इल्म को लेना है, इसको वो वाला रमजान ना बनाए जो पहले बेरू रमजान गुजरे, जिनमें कुरान पाक पढ़ पढ़ के और रखते गए और ये कह दिया हमने कुरान खत्म कर लिया। ये बेरू रमजान ना कर, इस रमजान को शऊरी रमजान बनाना, इस रमजान को वाकई इस तरह का बनाना है कि अल्लाह हमें पसंद कर ले, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे जो उसने मुंह मोड़ लिया अल्लाह ताला की नाराजगी दूर हो जाए। ये रमजान गुजरे तो ऐसा हो जैसे कि तूफान के बाद होता है ना, कि तूफान खत्म हो जाता है और फिर एक खामोशी हो जाती है, ये रमजान वो होना चाहिए। इस रमजान में इस कदर कुरान पढ़े, इतना पढ़े कि जमीन गूंज उठे कुरान पढ़ने वालों की आवाजों से, कि अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। आप अल्लाह को याद करेंगे तो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने देखें कितनी प्यारी ये बात यहाँ पे फरमाई है कि अल्लाह ताला ने इस रास्ते पर लगा दिया कुछ लोगों को जिनमें खामियां भी हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको यहाँ पे इस किताब के वारिसों के लिए चुन लिया। ये मंजिल नहीं है, मंजिल तो साबिकुम्बिल खैरात है, इससे भी आगे बढ़ना है, मुक्तसिद भी है, दरमियाने भी है, साबिकुम्बिल खैरात भी, हमने वहां तक पहुंचना है। अगर ये पहला स्टेप तो है, असल में इल्म का मकसद ये नहीं है कि बस हम ये जो हमने शुरू किया हुआ है कि बस हम तिलावत करते जाएं और बेसोचे समझे पढ़ते जाएं, नहीं, इस बार समझना भी, क्योंकि इल्म मार्फत का नाम है, अल्लाह को जानने का नाम है, इल्म कोई रट्टे मारने का नाम नहीं, फतवे देने का नाम नहीं, बस बड़े बड़े उलमा उनके इरशादात याद कर लेने का नाम नहीं। इमाम मालिक फरमाते हैं फकीह वो है जिसे ये याद रहे कि कब्र में उसने किन सवालों के जवाब देने हैं, ये है आलिम, ये है इल्म वाला। अगर किसी को ये याद नहीं है ना, तो उसके पास कोई इल्म नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है। जैसे आप ये आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कितनी इंफॉर्मेशन आती है, आप वीडियो स्क्रॉल करके सुन सुन के बंद कर देते हैं बस। नहीं, जब ये यकीन कामिल आ जाए ना कि मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना है, ये जिंदगी फानी है, मैं जवाबदेह हूं, ये है हकीकी इल्म। अल्लाह ताला ने भी रिसायत में फरमाया, ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, ये बड़ा फजल है जिस पे अल्लाह कर दे, तो अल्लाह का ये फजल पाना इस रमजान में। जन्नतु आदनी यदखुलूनहा, जन्नत आदन है जिसमें वो दाखिल होंगे, ये सब दाखिल होंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं ये सबके लिए है, जो लोग कुराने पाक की रस्सी को थाम लें, जो लोग इसमें अपने आप को गर्क करें, इसके इल्म को सीखने में, सिखाने में, इसको लेने में। हम कह रहे हैं आजकल, अब तो हमारे पास जो रहा सहा था वो भी नहीं हम कर सकते, हमारे तो बच्चे घर में हैं, हमारे तो हस्बैंड घर में हैं, हमारे तो काम बढ़ गए हैं, हमारे तो फलां हो गया, हमने तो रहा सहा भी छोड़ दिया। याद रखिए एक बात, ये रमजान हमारा बेस्ट रमजान भी हो सकता है, और ये रमजान हम बिल्कुल गारत भी कर सकते हैं, अगर हमने अपने आप को डिसिप्लिन ना किया, अगर हमने इस रमजान में अपने आप को ऑर्गेनाइज ना किया, तो ये हमारा रमजान सारे रमजानों से ज्यादा निकम्मा भी हो सकता है, ये याद रखिए। क्योंकि जब हमें आजकल भी हमसे कोई काम मैनेज नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं कर पा रहे, औरतें बौखलाई भी फिर रही हैं, ये पता नहीं क्या हो गया, कोई तूफान टूट पड़ा, क्या हो गया, सब घर पे हैं, क्या करें क्या करें, तो मुझे बताएं कि रमजान में फिर क्या होगा, जब और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तो फिर क्या करेंगे। इसके लिए हम सबको डिसिप्लिन चाहिए, तो अपनी रूटीन बनाएंगे हम, अपना स्केड्यूल बनाएंगे हम, उसमें कुरान को फिट करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि किसी को चुन ले अपनी किताब के लिए, इतनी बड़ी फजीलत हासिल होती है कुरान पाक से अपना ताल्लुक जोड़ने से, जन्नत अदन में ये दाखिल होंगे। क्या आप कुरान पाक के वारिस नहीं बनना चाहते? क्या आप नहीं चाहते अल्लाह आपको भी चुन ले इसके लिए? और कितनी भी इंसान के ऊपर फिर गलतियां हैं, वो अल्लाह ताला की मदद से, और ये इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे इंसान फिर आगे बढ़ता जाता है इस इल्म के मैदान में, और अपनी गलतियों को भी सुधारने का फिर मौका मिलता है, खामियां वक्त के साथ साथ ही देखिए निकलती है ना, लेकिन कम अज कम इंसान इनमें शामिल तो हो जाए। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, युहिलुना मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुलुन, इनको पहनाए जाएंगे जेवर जो सोने के होंगे, और मोती, और लिबासुहुम फीहा हरीर, और उनका लिबास इसमें हरीर का होगा, रेशम का होगा, ये है उनकी मेहमान नवाजी जो कुरान के वारिस हैं। तो इसको अपने लिए बहुत बड़ी सहादत समझे कि अगर हमें अल्लाह ताला चुन लेता है इस काम के लिए, और अगर अल्लाह ताला हमें इस काबिल कर देता है कि वाकई हम कुरान पाक को सीखे समझे। और देखिए एक हदीस है, बहुत ही प्यारी हदीस है, और जो लोग कुरान पाक के साथ वक्त लगाते हैं उनके लिए इसमें बड़ी खुशखबरी है। इस वक्त को याद रखें, मामूली ना समझें, बहुत कीमती समझे, कुरान के लिए वक्त आपको निकालना होगा, खुद निकलेगा नहीं, ये नहीं कभी सोचिएगा अब मैं बैठूंगी, अब मैं जब फरागत मिलेगी तो फिर करूंगी, नहीं, वो वक्त निकालना पड़ता है, फरागत का इंतजार अगर करेंगे ना तो फरागत तो कभी भी नहीं मिलनी, ये निकालना पड़ेगा वक्त। ये हदीस ये है, उकबा बिन आमिर से ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गौर से सुनिएगा हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कुरान को किसी चमड़े में लपेट दिया जाए, लव जुइल अल कुरान फी इहाबिन, अगर कुरान को इहाब में, इहाब कहते हैं वो खाल जिसको जला के ना तो दिबागत की जाती थी ताकि उसको जला के उसको इस्तेमाल के लिए पाक कर लिया जाए, तो अगर कुरान को इहाब में ऐसे यानी चमड़े में डाल दिया जाए, फिर इस चमड़े में लिपटे हुए कुरान को आग के अलाव में डाल दिया जाए तो आग उस चमड़े में लिपटे हुए कुरान को जला नहीं सकती। अब क्या मतलब हुआ, चमड़े से क्या मतलब है, आग से क्या मतलब है? मुहद्दिसीन ने इसकी जो शरह बयान की है ना वो बड़ी खूबसूरत है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि यहाँ चमड़े से मुराद है कुरान का आलिम, कुरान का हामिल, अल्लाह की किताब का जो वारिस है, जिसके सीने में अल्लाह के कुरान का इल्म दाखिल हो चुका है। चमड़े से मुराद वो दिल है, वो इंसान है, और आग से मुराद जहन्नुम की आग है। तो अगर जिस सीने में कुरान जमा हो, जिस सीने में कुरान का इल्म हो, उसको अगर जहन्नुम की आग में भी डाल दिया जाए तो अल्लाह ताला आग को इजाजत नहीं देता कि इसको जला सके। क्यों? इसलिए कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, और आग अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक अल्लाह के कलाम को नहीं जला सकती। सुभान अल्लाह। तो इस इल्म को जज़ब करें, इसके लिए जज्बा होना चाहिए, इसके लिए शौक होना चाहिए, इसके लिए तड़प होना चाहिए कि मैं इसका इल्म ले लूं, मैं इसके वारिसों में से बन जाऊं। तो इसको अहमियत दें। इस रमजान में सबसे ज्यादा आपकी तवज्जो कुरान पाक की तरफ होनी चाहिए। आपको पता है कि एक हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई इंसान कुरान पाक के साथ इतना वक्त लगाता है कि इसको दुआएं करने का भी वक्त नहीं मिलता, उसका भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो कुरान से इतना मशगूल है, अल्लाह ताला उसको उससे भी ज्यादा अता फरमाते हैं जो मांगता है। बिन मांगे अल्लाह उसको इतना अता फरमाते हैं जितना मांगने वाले को भी नहीं देता, अल्लाह ताला उससे ज्यादा इसको देता है। एक वाक्य आपको सुनाती हूँ, इसमें ये जो किरात हम पढ़ते हैं ना, ये इमाम हफ्स बिन आसिम की किरात है ना, तो इनकी किरात जो है वो इसकी सनद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब जाती है तो उनमें असातिज़ाए कराम में इमाम अब्दुर्रहमान अस्सुलमी भी हैं, उनका भी जिक्र आता है। ये कूफा में होते थे, मरकजी मस्जिद में, वहां पे कुरान पाक की तालीम देते थे, और 40 साल तक वो इसी से जुड़े रहे कि कुरान की तालीम देते रहे। लोगों ने कहा कि आप कोई और काम क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, बहुत बड़े इमाम थे, तो आप बस कुरान पाक की तालीम देते जा रहे हैं, आप कोई और भी तो चीज करें ना। तो फरमाते हैं मुझे ये हदीस उठने नहीं देती, ये जो मैंने अभी आपको सुनाई है ना, ये हदीस मुझे उठने नहीं देती। 40 साल उन्होंने हदीस के साथ कुरान के साथ लगाए, उस सारे उलूम पे कुरान भारी है। इसी तरह इमाम जुफर जो थे, इमाम अबू हनीफा के बड़े शागिर्दों में से थे, तो इमाम जुफर सारी जिंदगी तालीम हासिल करते रहे, कुरान के ज्यादा वक्त नहीं दे सके, इसी उसमें दीन की तालीम ले रहे थे लेकिन कुरान पाक की तरफ ज्यादा नहीं जा सके। तो जिंदगी के जो आखिरी 2 साल थे ना, तो उनको ख्याल आया कि मुझे अब कुरान की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तो तब जाके उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी किया, उसके उलूम को भी हासिल किया, और कुरान में बहुत यानी उसकी तालीम में आगे गए। जब वो फौत हुए तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा, बड़ी अच्छी हालत में, तो उसने पूछा कि आपके साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया? तो इमाम जुफर कहने लगे, मेरी सारी जिंदगी की जो मेहनत थी ना वो मेरे किसी काम ना आई, वो जो जिंदगी के आखिरी 2 साल थे अगर वो ना होते तो जुफर तबाह हो गया था। ये 2 साल उन्होंने कुरान के साथ लगाए थे कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे निजात दी। तो हदीस में आता है या तो आलिम बनो कुरान की या मुतालिम बनो, यानी या तो कुरान सीखने वाले या सिखाने वाले बनो, बल्कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू में आप देखें, गौर करें, तुम में से बेहतरीन हुआ जो कुरान सीखता है और सिखाता है। तो पहले किसकी बात आई? सीखने वाले की बात आई। सिखाने वाला तो ठीक है, इस तरफ कदम उठा ही चुका है ना, जो सीख रहा है अल्लाह ताला ने उसकी कितनी कदरदानी की कि उसका जिक्र फैले फरमाया। तो ये देखें कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की कितनी उसके हाँ वैल्यू है, कितनी कदरो कीमत है, जो उसके कलाम को सीखते हैं, जो उसके कुरान के लिए अपना वक्त लगाते हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन करते हैं, कोई पूछता है अच्छा फिर तर्जुमा करें क्या, करें फलां करें, पढ़ें कि नहीं, तिलावत करें कि तफसीर पढ़ें कि फलां पढ़ें। भाई अपना वक्त कुरान के साथ लगाओ, इसको सीखो भी, इसको समझो भी, इस रमजान में इसकी तिलावत भी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राइल अलैहि सलाम आते थे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सुनाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान पाक सुनाते थे। तो जो रमजान का महीना है वो सुनने का भी है और सुनाने का भी है। जो पढ़ नहीं सकते वो सुनना ही शुरू कर दें, सुन तो सकते हैं ना सब, और वो लोग तो फिर भी समझ सकते थे, हमें समझ कुछ नहीं है। तो समझने के लिए भी वक्त लगाएं, इसको सीखने के लिए वक्त लगाएं। जो इल्म के रास्ते पर चलता है, हदीस में आता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। क्या नहीं चाहते हम कि जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए? तो इस रमजान को डेडिकेट करें कुरान के लिए। कुरान पाक जितना भी आप अपने रूटीन के अंदर लेकर आए, जितना पिछली दफा पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ना। क्योंकि देखे मैंने आपको बताया अल्लाह को मनाना है हमने, तो अल्लाह को मनाने के लिए जो उसके पसंद के काम है ना, उसका कलाम है, ये उसका कलाम है, उसकी बात है, उसके कलाम से ज्यादा बढ़ के और कोई चीज नहीं हो सकती। तो वो अल्लाह के अल्फाज हैं, उनके जरिए अल्लाह को राजी कीजिए, इस रस्सी को थाम ले ताकि टूटा हुआ जो ताल्लुक है वो जुड़ जाए। फिर दूसरा काम इस आयत में ही बताया गया रोजे का। रोजा भी जो है ना, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इसके बारे में, हदीसे कुदसी है। हदीसे कुदसी मीन्स के अल्लाह ताला ने फरमाया अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और सही मुस्लिम सही बुखारी दोनों में ये हदीस है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। बाकी तमाम नेकियां जो है ना अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बंदे के लिए, बंदे के लिए है और रोजा मेरे लिए। क्यों? बाकी नेकियां भी तो हम अल्लाह के लिए करते हैं ना। देखिए बाकी नेकियों का ये है कि जैसे नमाज है तो उसका ये है कि मसलन नमाज का इतना अजर है, वो आपको इतना अजर दिख जाएगा। हज है इसका ये है तो आपको वो दिख गया, इसके इतने मार्क्स हैं मसलन समझने, इतने सवाब है। आपकी तस्बीहात है उसका इतना सवाब है, आपने किसी की हेल्प की इसका इतना सवाब है। रोजे का बताया ही नहीं गया सवाब, वो तो कयामत के दिन जब इंसान अजर के पहाड़ों के पहाड़ देखेगा, इतनी कुछ देखेगा उसका, तो वो हैरान होगा ये किस चीज के है। बास चीजों के जो सवाब है ना, अजर है, वो बेहिसाब है, बेहिसाब। रोजा उनमें से एक टॉप की चीज है जिसका अजर इतना बेहिसाब है कि इंसान हैरान हो जाएगा, इतना ज्यादा अजर मेरे रोजे का। इसके ऊपर ये बात है असौमु ली व अन अज्जी भी, मेरे लिए रोजा। और जब कायनात का मालिक कह दे कि मैं इसका अजर दूंगा तो फिर वो तो क्या ही कहने हैं, फिर उस अजर को कोई काउंट कर सकता है? वो तो बेहिसाब ही होगा ना, जाहिर है इसका हिसाब काउंटिंग नहीं हम कर सकते। बाकी सारी चीजों की काउंटिंग है, तो ये मसलन आपने ये पढ़ा इस हरफ की 10 नेकियां, इसकी 10 नेकियां, इसकी 10 नेकियां, लेकिन रोजे का बेहिसाब अजर। आप देखें कि ये भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक कितनी बड़ी एक इबादत रख दी जिसका इतना बड़ा अजर रख दिया। इस रोजे को भी फिर हमने मोहब्बत के साथ, शौक के साथ और शऊर के साथ रखना। क्या मतलब शऊर के साथ रखना? शौक का तो समझ आ गई, ऐसे नहीं करते हुए हाय रमजान आ रहा है, हाय हाय अब रमजान भी आ रहा है, ऊपर से हम इतनी परेशानी में, ऊपर से रोजे भी रखने पड़ेंगे, इस तरह वाला नहीं मांगना। शौक के साथ, मोहब्बत के साथ। कि एक देखे सल्फ सालहीन में एक थे जो बिस्तर मरते थे तो पता है क्या कहते, कहने लगे या अल्लाह तुझे पता है मुझे ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ क्यों प्यारी थी, इन्हें ये दुनिया में जीने का बड़ा शौक था। या अल्लाह, तुझे पता है मुझे सिर्फ इसलिए ये दुनिया की जिंदगी प्यारी थी कि गर्मियों में रोजे रखूं, यानी जब प्यास से जुबान सूख जाती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, उस वक्त इंसान को जो मजा आता है कि ये अल्लाह के लिए है, मैं भूखा प्यासा अल्लाह के लिए, उसका शौक इतना था, कहते उसके लिए मुझे जिंदगी प्यारी। और सर्दियों की रातों में, सर्दियों में नमाजें पढ़ना, यानी सर्दियों की रातें कितनी मुश्किल है, इंसान गर्म लिहाफ से उठे, उस वक्त तो ठंडे पानी होते थे, ठंडे पानी से वुजू करे, फिर अल्लाह के आगे खड़ा हो जाए, किसका दिल चाहता है गरम गरम बिस्तरों से उठने का। लेकिन मुझे इसलिए प्यारी थी ये जिंदगी, उनको तो जिंदगी का शौक ही इसलिए, क्योंकि देखिए जब एक दफा ये जिंदगी गुजर गई ना, एक दफा यहां से चले गए ना, वहां पे रोजे हैं, ना वहां पे कयाम है, ना वहां पे तहज्जुदे हैं, ना वहां पे कोई जिक्र अस्कार है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह के पास पहुंच गए तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी की लज्जत ही है। ना वहां पे सजदे हैं, ना वहां पे तोबा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वहां पे निदामत के आंसू है, कोई वैल्यू नहीं किसी चीज की। फिर वहां पे कितना लोग जहन्नमी में कितना रोएंगे, और उससे पहले हशर के मैदान में लोग कितने पसीनों में शराबोर होंगे खौफ के मारे, रोने के लिए कितने आंसू निकलेंगे कि आंसू निकल निकल के भी फिर खून निकलने लगेगा, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है उनकी। भूखे प्यासे खड़े रहेंगे हशर के मैदान में 50,000 साल के दिन के बराबर, नहीं कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन कोई सवाब नहीं है। यहाँ पे तो 16 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, इतनी देर भूखे प्यासे रहना पड़ता है ना, यहाँ पे इतनी हजारों साल रहेंगे, कैसे रहेंगे? लेकिन उसकी कोई भी अजरो सवाब नहीं मिलेगा, अजरो सवाब यहाँ का है। ये है जिंदगी जिसमें कदरों कीमत है इन चीजों की। ये आज ये जो हमारी छोटी छोटी बेकार सी हमारी ही बातें, ये भी अल्लाह के हम बहुत बड़ी तुल सकती हैं। और एक दफा आंख बंद हो कर तो कितने मर्जी आंसू बहा लोगे ना, तोबा नहीं कर सकोगे, अल्लाह को मना नहीं सकोगे, फिर नहीं उसने मान, हाँ अभी मान सकता, अभी मान सकता, अभी दिखाओ अपनी नेकियां अल्लाह को, दिखा दिखा के करो। अल्लाह कोई भी नहीं देखने वाला, किसी को भी नहीं पता, ना मैं मस्जिद में हूं, ना मैं किसी के सामने हूं, मैं तो अपने घर में हूं, किसी को नहीं पता मैं कितना पढ़ रही हूं, कितना नहीं पढ़ रही, क्या कर रही हूं। अल्लाह तू देख रहा है, तेरे लिए कर रहे, तो इस तरह हम अल्लाह को मना सकते हैं आज, उसके मनाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा ज्यादा करके दिखाएं, शौक शौक से करके दिखाएं। और रोजे का मैंने आपको बताया कि शऊरी रोजा रखें, शऊरी रोजा मतलब क्या, वो वाला रोजा आप रखना छोड़ दें जो हम बचपन में रखा करते थे। वो कौन सा रोजा है, अब मैं अगर अपने 6-7 साल के बच्चे को भी रोजा रखवाऊं तो उसको इतना पता है भी खाना कुछ नहीं है, पीना कुछ नहीं है, इतना ही अगर हम इतने बड़े होके हमारा भी रोजा यही है कि बस खाना नहीं है पीना नहीं, इतनी बस अक्ल है, तो ये क्या रोजा है? ये सियाम तो है, ये सोम नहीं है। सोम का मतलब होता है रुक जाना, रुक जाना किस चीज से रुक जाना, यानी जब इंसान अपनी आंखों को इस्तेमाल करे तो हराम से रुक जाए, कानों को इस्तेमाल करे तो सोच समझ के इस्तेमाल करे, अपनी जुबान को इस्तेमाल करे तो सोच समझ के बोले, अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाना, ये है सोम, ये है शौरी रोजा। अगर शौरी रोजा ना रखा और वो ही बेशौरी वाले बचपन वाले रोजे रखते गए, तो आप क्या समझते हैं? हर रोजे का अजर एक जितना ही है? आप लोग क्या सोचते हैं? जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसका अजर दूंगा, तो आपको लगता है सबका एक जितना होगा अजर? ये सबका तो एक जितना नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई रोजेदार ऐसे हैं कि उनको रोजे से सिवाय भूख प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता, से पता चलता है ना कि बाज रोजेदार ऐसे भी हैं कि कुछ भी नहीं उनको मिलता। एक और हदीस में आता है, जिसने रोजा रख के झूठ बोलना नहीं छोड़ा, अल्लाह को परवाह नहीं उसके भूखे प्यासे रहने की, यानी उसका रोजा ही नहीं, वो तो सिर्फ भूखा प्यासा ही है। तो इसका मतलब क्या है कि झूठ बोलना नहीं छोड़ा, यानी रोजे के अंदर झूठ बोलना छोड़ना, ये भी रोजे की जरूरत है कि आप उसके अंदर ये भी छोड़े, हराम को भी छोड़े, हराम चीजें देखना, गलत चीजें बोलना, चीखना, चिल्लाना, गुस्से करना, बदजुबानियां करना, ये सब चीजें छोड़नी है। जैसे राम वाले के लिए ना, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला, रफज मियां बीबी की कोई ऐसी सेक्सुअल कंटेंट बात नहीं करनी, फिस्क नहीं करना, कोई नाफरमानी नहीं करनी, झगड़े नहीं करने। तो रोजे में भी ऐसे है कि ऐसी फुसूक और जिदाल नहीं करना। हम एहराम में तो कितनी इसकी पाबंदी करते हैं, लेकिन रोजे में याद ही नहीं रहता कि ये चीजें भी तो ममनू है। सिर्फ खाना पीना छोड़ के सोचते हैं हम बड़ा अच्छा रोजा रख रहे हैं। तो इस दफा रोजा भी शऊर वाला रोजा रखें, रोजा भी पोश रोजा रखें, जो कि वाकई उसकी वैल्यू अल्लाह के यहाँ। आप देखें, आप कोई चीज लेने जाते हैं, मसलन आप घर खरीदने गए, घर क्या, एक बेडरूम का घर, चार बेडरूम का घर, क्या एक बराबर कीमत के होते हैं? नहीं ना। वो कहते हैं कि जितना आप बड़ा अच्छा, जितना आप अपग्रेडेड घर लेना चाहेंगे, जितनी आप अच्छी लोकेशन में लेना चाहते हैं, जितनी आप ज्यादा यानी अपडेटेड घर लेना चाहते हैं ज्यादा अपग्रेड्स के साथ, उतनी आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जितनी कीमत आप अदा करेंगे उतनी ही बड़ी चीज आपको मिलती है ना। कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसी तरह रोजे के लिए जितना आप ज्यादा इसके अंदर अपने आप को बुराइयों से बचाएंगे, नेकियों के अंदर रखेंगे, उतना ही इसका अजर बढ़ता जाएगा। इसका फिक्स नहीं है, ऐसे भी हो सकता है 0 नंबर मिल जाए, ऐसे भी हो सकता है 10 मिल जाए, ऐसे भी हो सकता है बेहिसाब मिल जाए। लेकिन आप कितना गुड़ डालते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना संभाल संभाल के रखते हैं अपने रोजे को। देखिए ये दिन जो आ रहे हैं ना, ये वो वाले दिन हैं जिसमें के फरमाया अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देता है। 8 दरवाजे इन जन्नत के सारे अल्लाह खोल देता है। क्यों खोल देता है, इसका क्या मतलब खोल देता, हमें क्या इससे खुलते रहे, नहीं खुलते रहे, हम तो जमीन पे बैठे हैं। असल में ये इस बात के लिए हमें बताया गया, और ये इस चीज का सिंबल है कि देखिए, मसलन हमारे मुल्कों में कई लोगों को वेस्ट में जाने का बड़ा शौक होता है, कईयों को अमेरिका आने का बड़ा शौक होता है, इस तरह होता है। अच्छा, अगर कह दिया जाए कि जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं उन्होंने अपने बॉर्डर खोल दिए, आप जो मर्जी चला जाए, तो क्या होगा, लोग भागेंगे, जितनी भी कीमत देनी पड़े लोग भागेंगे, जिनको शौक होगा वो भागेंगे ना, कहेंगे इस वक्त तो बॉर्डर खुल गए, इस वक्त तो बगैर इजाजत के आप जा सकते हैं, इस वक्त तो कोई मसला ही नहीं है जाने। अल्लाह ताला ने भी जन्नत के दरवाजे खोल के हमें बता दिया कि इस वक्त तो अफोर्डेबल है जन्नत में जाना, मैंने खोल दिया, आप दौड़ तुमने लगानी, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम डील है, जिसको लिखा होता है ना हर एक सेल या उसके नीचे, वो कहते हैं लिमिटेड टाइम डील। इसी तरह ये अय्याम मादूदात है, लिमिटेड टाइम डील है, ये हमेशा की नहीं है। इसके लिए तुम्हें इन दिनों में नेकी करनी होगी, इन दिनों को वेल करना होगा। तो इसलिए इन दिनों को खास तौर पे ये सोचें कि इसके अंदर मैं अपनी जुबान को, वैसे तो हमेशा ही काबू रखना है, लेकिन इन दिनों के अंदर ना मैं कोई लड़ाई झगड़ा करूं, इन दिनों में मैं नहीं कोई झूठ बोलूं, इन दिनों में अपने रोजे को ना खराब कर दूं। हाँ, हर वक्त हिफाजत के साथ रखें अपने रोजे को, कि मेरा रोजा बच जाए, मेरा रोजा सही रहे, मैंने सलामत रखना इस रोजे को, क्योंकि इसका मैंने बेहिसाब अजर लेना। इस तरह का रोजा अल्लाह को मतलूब है, और ऐसा हमें रोजा रखना है इस रमजान में। तो कुरान पढ़ना है तो शऊरी कुरान पढ़ना है, रोजा रखना है तो शऊरी रोजा रखना है। और तीसरी चीज क्या, जो सबसे बड़ी चीज है दुआओं में, क्योंकि अगली बात यहां पे दुआ की ही आ रही है सूरह बकरा, कि अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, बहुत ज्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। और ये वक्त है तौबा का, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने इसमें ऐसे से काम भी दे दिए, जैसे हदीस में आता है मन सामा रमदान ईमान हुआ एहतसाबन वो फिर अलहू मा तकद्दम मिन दंबी। और जिसने रमजान में रोजा रखा ना ईमान और एहतसाब के साथ, यानी सही वाला रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देता है। जिसने कयाम किया रमजान में उसके भी अल्लाह ताला इसी तरह ईमान और एहतसाब के साथ किया, तो उसके पिछले गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। तो इससे पता चलता है कि रमजान में अल्लाह ने इंसेंटिव्स दिए हैं कि आप अपनी बख्शिश करा लो, क्योंकि जब इंसान गुनाहों में होता है ना, तो याद रखिए ये गुनाह हमारे बलाओं को आवाज देती हैं, बलाओं को इनवाइट करते हैं। आज हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आई हुई है वो हमारे अपने गुनाहों का नतीजा है और कुछ नहीं है, एक और कुछ नहीं है, ये हमारे अपने गुनाह है जिनकी वजह से ये बलाएं आई हैं, हमारे कोई कसूर है। अल्लाह ऐसे नहीं भेजता इन चीजों को। जब तक लोग इज्तमाही तौर पे ना गुनाहों में पड़ जाए, कोई ऐसा जुर्म ना हो जो सारी अक्सरियत ना करे, तब तक अल्लाह ये ताऊन और ये बलाएं नहीं भेजता। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में सूरह रूम में, अल्लाह ताला ने फरमाया जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर, फसाद जाहिर हो गया खुश्की में भी और समुद्रों में भी। किस वजह से? बीमा कसबत आई दिन नास, लोगों के अपने करतूतों की वजह से, इनके अपने हाथों की कमाई की वजह से। लियुज़ीकहुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिउन, ताकि अल्लाह चखाए उनको उनके बाज आमाल का मजा, ताकि वो पलट आए। अल्लाह ताला इसलिए फिर ये बलाएं भेजता है। हसन बसरी फरमाते हैं कि अपने इंसान अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला के तरफ से इन चीजों को अपने ऊपर आवाज देता है। ये फितना और फसाद नाजिल इसी वजह से होता है। इंसान की अपनी जो हाथों की कमाई होती है, ये चाहे पिछले जमानों में प्लेग था, आज के जमाने में और चीज है। और एक हदीस इब्ने माजा की, अगर आप वो सुन लें तो आपको लगेगा कि शायद आज के हमारे हालात के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजरीन से फरमाया था, मुहाजरीन पांच चीजें हैं जिनसे तुम आजमाए जा सकते हो, और मैं पनाह मांगता हूं कि तुम इनसे आजमाए जाओ। फरमाया पहली चीज ही जो फरमाई, फरमाया कभी ऐसा नहीं होता कि फहाशी या जिना लोगों में फैले, आम हो जाए, मगर अल्लाह ताला उनमें फिर ताऊन भेजता है और ऐसी बीमारियां जो उनके पहलों ने कभी सुनी भी नहीं थी। कभी ऐसा नहीं होता कि, यानी जब भी लोगों के अंदर फहाशी होगी, जब भी लोगों में बेहयाई फैलेगी, तो अल्लाह ताला वो बीमारियां भेजता है जिनके कभी नाम भी नहीं सुने हुए लोगों ने, ताऊन और उसके जैसी बीमारियां, वो यानी वबाएं, कंटेजियस बीमारियां। कि जब शर्मो हया खत्म हो जाए, जब इंसान अपनी ख्वाहिशात कहीं बाहर पूरी करने लगे, अपनी लज्जतों को पूरा करने के लिए कोई उसके अंदर शर्म ना रहे, शादी से पहले या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और ये कितने आम हो गए हैं और इनको कोई बुरा नहीं समझा जाता, तो अल्लाह ताला ऐसी बलाएं भेजता है। फिर अनस बिन मालिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के पास गए, इनके साथ भी एक सहाबी थे जो पर्दे के पीछे थे, तो उन्होंने पूछा है उम्मुल मोमिनीन क्या बताएंगी कि ये जलजले क्यों आ रहे हैं? पर अरबी में जलजला कहते हैं, सिर्फ अर्थक्वेक को नहीं कहते, कोई भी ऐसी चीज जो हिला मारे, इतनी बड़ी मुसीबत। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि जब लोग गुनाह करते हैं और बड़े गुनाहों को मामूली समझने लगते हैं, जैसे जिना है, शराब है और दूसरे गुनाह है, कौमे लूत वाला अमल है, तो अल्लाह ताला आसमानों में गजबनाक होता है और वो जमीन से कहता है इनको सजा दो। अगर वो तौबा कर ले तो सजा उनसे उठा ली जाती है, और अगर वो तौबा नहीं करते तो सजा जारी रहती है, हत्ता कि वो तबाह हो जाते हैं। अब देख ले कि कौन सी चीज है जो इंसानों से इन बलाओं को टालती है, वो तौबा इस्तगफार, तब सजा उठाई जाती है। और इंसानों ने बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, लेकिन हम ये कहते हैं, देखें जो हम रात को दुआ पढ़ते हैं ना सोने से पहले, इतनी प्यारी उसके अंदर बात है, अल्लाहुम्मा ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। अल्लाह ना कोई पनाह है ना कोई निजात की जगह है, तुझसे, इल्ला इलैक, मगर तेरे पास ही है अल्लाह, हम और किधर जाएंगे, अल्लाह तेरे पास ही है, यानी हमारे पास कोई और सहारा नहीं। साइंस खत्म हो चुकी, टेक्नोलॉजियां खत्म हो गई, सुपर पावरें सब बिछ गई, अल्लाह कोई निजात की जगह नहीं है, कोई भागने की जगह नहीं, कोई मलजा नहीं है, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई पनाह नहीं है सिवाय तेरी पनाह के। तो अगर अभी भी हम ना उठे, अभी भी हम ना जागे, तो वो कौन सा वक्त होगा जिसमें जागेंगे? कौन सा वक्त होगा जिसमें हम तौबा करेंगे, अपनी जिंदगी को संवारेंगे? और इससे ज्यादा अच्छा क्या मौका हो सकता है कि हम अपने गुनाह धो लें रमजान में, और हम इस रमजान में तौबा करके अपनी जिंदगी को एक नए डगर पे लेकर आए। हम अब बस कर दे, बस कर दे, और अल्लाह कैसे मैसेज भेजेगा बताएं? सूरह नाम में एक आयत आती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ी थी तो आप कांप गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेक होने लगे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए थे और अल्लाह की पनाह मांगी थी। तो वो आयत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल, कह दीजिए, हुवल कादिर वाला अय्यबात अलैकुम अजाबन, वो कादिर है इस बात पे कि तुम्हारे ऊपर अजाब भेजे, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से। तो जब यहां तक बात पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के चेहरे की पनाह मांगता, औज भी वजही का, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं तेरे चेहरे की। और फिर फरमाया आगे, औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या वो अजाब तुम्हारे पैरों के नीचे से आ जाए। फरमाया औज़ु बि वजहिका, अल्लाह मैं तेरे चेहरे की पनाह चाहता हूँ। और फिर फरमाया आगे आयत पढ़ी, औ यल्बिसकुम शियान, या अल्लाह ताला तुम्हें आजमा ले, तुम्हें ग्रोहों में कर दे, और तुम में से एक को एक का मजाक चखाए, यानी सिविल वॉर की तरफ इशारा है कि आपस में ही खाना जंगी हो जाए। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये फिर भी आसान है, ये फिर भी आसान है, क्योंकि जो जमीनी दुश्मन है, जो सामने इंसान नजर आ रहे हैं, उनके साथ मुकाबला फिर भी आसान है, लेकिन जो आसमानी बलाएं हैं, जो अजाब है, इनके साथ मुकाबला करना इंसान की ताकत नहीं है, वो ही बच सकता है जो अल्लाह की पनाह में आ जाए। लोगों की पनाहें काम नहीं देंगी, और ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि लोग आज बेबस है, लोग गिव अप कर चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं, बड़ी बड़ी कुव्वतें घुटने टेक चुकी हैं। तो जमीनी दुश्मन समझ आ जाते हैं इंसान को, आसमानी अजाब नहीं समझ आया करते। फिर भी अगर हम ना समझे आज, फिर भी हम इसको मामूली समझे, तो फिर और कौन सी चीज है जो आएगी हमारे ऊपर जिस पे हम समझेंगे? वो कौन सी चीज है जो हमें फिर भी होश, आज भी ना आया तो कौन से वक्त में होश आएगा? तो आज एक ये काम करें कि तौबा इस्तगफार करें बहुत ज्यादा, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा रमजान का इस्तगफार प्रोग्राम है उसके अंदर भी मैं आपको और भी बातें बताऊंगी तौबा इस्तगफार के बारे में, वो जरूर आप सुनिएगा इस्तगफार प्रोग्राम, क्योंकि हम इसी हवाले से बात करेंगे सारी। और अपनी अगली चीज, अपने घरों को मस्जिदें बना लें। अब हम मस्जिद नहीं जा सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने फजीलतें दी थी ना, जो किसी और को नहीं दी, तो उनमें एक ये भी थी कि आपने फरमाया मेरे रब ने मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दी है, कहाँ भी नमाज पढ़े। तो अपने घर में भी घरों को मस्जिद बना ले, एक कमरे को मुकर्रर कर ले अपनी फैमिली के साथ, वहां पर नमाज जमात के साथ पढ़े, तरावी पढ़े, जिसकी अच्छी किरात हो वो कुरान पढ़े, और चाहे दो चार नफल ही पढ़ा दे, उसके बाद आप खुद अपना पढ़ लें। तो हमने इसको छोड़ना नहीं है, और अपने घर वालों को भी इसमें साथ लेके चलना है। हमने बताना है कि मस्जिदें बंद हो भी जाए, अल्लाह ताला हम तेरे बंदे हैं, तेरा दर तो हमेशा खुला है, अल्लाह हमने तेरा साथ नहीं छोड़ना, हम तो तुझसे ही चिमटेंगे चाहे तू हमें धुतकारे। तो मस्जिदें छूट जाएं, कारोबार छूट जाए, रिश्तेदारियां छूट जाए, मिलना मिलाना छूट जाए, मगर अल्लाह से हमारा ताल्लुक नहीं छूट सकता। तो चाहे घर में भी है, मस्जिद बनाए घर को, हो सकता है यही जिंदगी को बदल देने के लिए रमजान हो, कि हम इसके आदी हो जाए, इसी तरह हमारे घरों में ही मसाजिद बन जाए, मस्जिद ना कभी जा सके तो घर में हमारा ये इत्तेमाम होने लगे, हम इसको ही अपनाए फिर बाद में भी। तो घर में भी आपके बरकत होगी इससे, घर में कुरान पाक की आवाज होगी इससे, तो ये जरूर करें। और दूसरी चीज ये, अपना वक्त जाया नहीं करना। लेकिन जिसने बड़ा काम करना हो ना, हमारे पर वो हालात आ चुकी हैं जो कभी ना किसी ने सोचे ना, जब हम लास्ट रमजान में अपने लेक्चर वगैरह कर रहे थे, कभी सोचा था हमने कि अगले रमजान में हमारे पर ये हालात होंगे? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था हम इस तरह बंद होंगे। इवन जब हमने ये लेक्चर रखना था, मस्जिद के अंदर बातचीत हो रही थी, वो इनवाइट कर रहे थे, कभी नहीं सोचा था कि तो हो ही नहीं सकेगा, लेकिन हो गया ना। तो हमने अपने टाइम को कीमती जानना। पता नहीं है, हो सकता है पता नहीं हमारा आखिरी रमजान हो ये, हो सकता है पता नहीं अगले साल हम हो ही ना, या पता नहीं हो तो किस हाल में हो, तो कुछ नहीं पता। इसलिए अपने वक्त को डिसिप्लिन के साथ गुजारना है, अपना स्केड्यूल बनाना है। सिर्फ इधर उधर बातें करके, वीडियोस देख के, व्हाट्सएप पे वक्त गुजार के, अपने आप को समझना कि मैं बड़ा नेकी कर रही हूँ, सहरी तारी ट्रांसमिशन देख के, ये कोई ऐसी चीज नहीं। मैंने कहा सबसे ज्यादा अपना वक्त कुरान के साथ लगा। रमजान मुबारक जब हम कहते हैं ना, तो मुबारक क्या चीज होती है? मुबारक बरका से है ना, खैर कसीर, लेकिन वो खैर कसीर जो किसी मुश्किल के बाद आए। ये जिस वक्त हमारी मुश्किलात हैं, मतलब घर के अंदर बच्चे हैं, अगर वो गुस्सा दिला रहे हैं, या घर में और काम बढ़ गया है, या और ज्यादा हमें अपनी यानी और चीजों पे भी तवज्जो देनी पड़ रही है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, बल्कि ये सोचें कि ये मेरा सबर जो है इसके ऊपर भी मुझे अजर मिलेगा। फिर एक और चीज ये कि ये रमजान शुरू करने से पहले ना, चूंकि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों से कीनों को दूर करें, क्योंकि याद रखें लैलतुल कदर में भी वो जिसके दिल में कीना है ना, उसकी मगफिरत नहीं होती। तो अगर दिलों में कीने हैं, दिलों में हसद है, दिलों में ऐसी चीजें हैं कि दूसरों से झगड़े किए हुए, इस चीज को खत्म कर दे। लैलतुल कदर का इल्म भी क्यों नहीं डेट पता चली थी दो लोगों के झगड़े की वजह से? इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, हम सोचते हैं कि ये हमारे झगड़े करने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, और अल्लाह हमारी ये जो हम छोटा मोटा अपना कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इसको कबूल कर ले और इसका अजर दे दे, तो इसके लिए दिलों को पाक करें। दिलों को गंदे दिलों के साथ रमजान को ना शुरू करें। और ये जो नफरत है, ये जो हसद है ना, हसद तो आपको पता है ना कि नेकियों को खा ही जाता है, हदीस में आता है ऐसे ही खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा लेती है, जला के खत्म कर देती है आग, बिल्कुल उसका कुछ नहीं रहने देती। इसी तरह हसद नेकियों को खा देता, बिल्कुल राख बना के रख देता। तो इसलिए हमारी ये जो छोटी मोटी हम कर रहे हैं, पता नहीं नेकी भी है कि क्या है, लेकिन जो भी है इसको, ये भी तभी महफूज रह सकती है अगर हम इन चीजों से दूर रहे। तो अपने आप को इसके लिए तैयार करने के लिए ना, हमें शौरी तौर पे कोशिश करनी पड़ेगी। ये भी कि रमजान आ रहा है, हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। और इस दफा तो ज्यादा कोई तैयारियां हैं ही नहीं, क्योंकि ज्यादा तो चीजें ऐसी मिल नहीं रही, कोई आप पैटीज, कोई रोल्स, कोई ऐसे नहीं बना रहे होंगे, इतने ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ज्यादा ध्यान खाने पे देने की बजाय अपने वाकई इस रमजान को सीरियस लेना है। अल्लाह ताला देख रहा है कौन क्या कर रहा है, इसलिए अपनी ये जो आप रूटीन है उसको ऐसे सेटअप करेंगी कि घर के भी जो जिम्मेदारियां वो भी पूरी हो जाए, और साथ साथ ये जो हमने नेकियां करनी है ये भी हम जमा कर सकें। फिर इसी तरह सदका बहुत दें, क्योंकि सदका जो है ना वो अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है, बलाओं को टालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे अपने बीमारों का इलाज करो, एक बीमार भी है तो वो भी सदका करे, बुरी मौत से बचाता है, इसलिए सदका जरूर करें। यही चीजें हैं जो हमें अल्लाह ताला की नाराजगी को दूर करने में काम आ सकती हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ये रमजान बेहतरीन तौर पे गुजार लें, और इस सेहत और आफियत के साथ अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिससे वो राजी होता। दुआ कर लेते हैं आप। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अलअजीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अलअजीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك المعافة والعافية في الدنيا والآخرة. اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما. یا اللہ دنیا کی بھی ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اور آخرت کی بھی ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھ. اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، تو اللہ ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے. یا اللہ تعالیٰ ہم نے تجھے بڑا ناراض کر دیا اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تعالیٰ تیری رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، اللہ اس سے پہلے ہی ہماری بخشش فرما. اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا، اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا. اللہ یہ بلا جو ہمارے اوپر آئی ہے اسے ہم سب کو محفوظ کر. یا اللہ تعالیٰ یہ تیری بہت حقیر سے چھوٹی سی مخلوق ہے جس نے ہمیں عاجز کر کے رکھ دیا، یا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھنا. یا اللہ تعالیٰ یہ مصیبت جو آئی ہے، یا اللہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ تو کسی قوم کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا، یہ ان کی اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے. یا اللہ تعالیٰ اگر یہ تیری طرف سے آزمائش ہے تو اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر تیرے مدد سے ہم صبر کریں گے. لیکن اللہ اگر تو ناراض ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم تیری ناراضگی نہیں سہ سکتے، اللہ پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہیں. یا اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں اگر ہوش نہ آیا تو کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ابھی بھی جب مسجدیں بند ہو گئی تب بھی ہمیں ہوش نہ آیا تو کب آئے گا؟ یا اللہ جب نیکی کے مواقع ہم سے چھن گئے تب بھی ہمیں ہوش نہ آیا تو کب آئے گا؟ یا اللہ تعالیٰ ہم اتنے گم ہو گئے، ایسے ہم کیا مست ہو گئے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں آتا. یا اللہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، بے شرمی کے کاموں سے محفوظ رکھ. या अल्लाह ताला, हमें उस हर गुनाह से महफूज रख जिसमें तेरी नाराजगी है, हर उस काम से हमें दूर कर दे, हमें नफरत दिला दे, या हमारे घरों से उस काम को खत्म कर दे जिसमें तेरी नाराजगी हो। अल्लाह ताला तेरा बड़ा सब्त है, तू हलीम है अल्लाह, तेरे अंदर बड़ा तहम्मुल है, तेरे अंदर बड़ा सब्र है या अल्लाह ताला। अल्लाह तूने हमारे गुनाहों को देख के भी हमारी सख्त पकड़नी की, तूने हमें तबाह नहीं कर दिया। अल्लाह अगर तू हमें अजाब भी दे तो तू हक बचाने में, तेरा फैसला फिर भी ठीक होगा क्योंकि हम इसी काबिल है अल्लाह। तो आज़िब हूँ फ़ाइन्ना हमें बात होगी, अल्लाह ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया था या अल्लाह तू इसको अजाब दे तो तेरे बंदे, लेकिन अल्लाह अगर माफ कर दे तो तू गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह तू माफ ही कर दे, अल्लाह तू माफ ही कर दे कि हम तुझसे उम्मीद सिर्फ मगफिरत और रहमत की करते हैं। या अल्लाह तूने खुद फरमाया मैं युजीबुल मुस्तर रहता हुआ यक्षिफ सू, कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है, जो कर्म में है कौन है उसकी पुकार सुनता है जब वो पुकारता है उसकी तकलीफ दूर करता है। अल्लाह तूने खुद ये फरमाया इना हुमा अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा भी कोई है जो दूर करे। अल्लाह ताला हम तुझे भूले रहे, तूने अपने कुरान में हमें पुकारा फाइना तथा भूत, कहा जा रहे अल्लाह को छोड़ के लेकिन हम दुनिया में घर करे। अल्लाह तूने पुकारा फंदा तो फकून, कहाँ फिरे जा रहे हो लेकिन अल्लाह हम घूम रहे। अल्लाह ताला तूने हमें बुलाया लेकिन हमें होश ना आया। अल्लाह ताला तूने ये बला भेजी है या अल्लाह, अभी हम सीधे रास्ते पर ले आ इससे पहले कि हम बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाए। अल्लाह ताला तूने ये मुसीबत भेज के अपनी कुदरत दिखाई है या अल्लाह, हम आजिज़ हैं अल्लाह, हम तेरे बंदे अल्लाह, हम तो पहले ही झुके हुए या अल्लाह, हम मानते हैं तू सबसे बड़ा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू कादिर है हर चीज पर, तू कादिर मुतलक है अल्लाह ताला, तेरे फैसले को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तू जो चाहे करे, तूने कौन कहना और हो जाना है या अल्लाह, सारी कुदरतों का मालिक तू है, जमीन और आसमान की बादशाह तेरे हाथ में है या अल्लाह ताला, तू हम सबको माफ कर दे, हम सबको माफ कर दे, हम सबको माफ कर दे, हमारी तौबा को कबूल कर ले, हमें धुतकारना ना हमारे गुनाहों की वजह से, हम बड़े निकम्मे हैं या अल्लाह, हम बड़े निकम्मे हैं या अल्लाह, हमने बुराइयां देखी और खामोश रहे या अल्लाह, हमने नमाजें पढ़ी और ख्यालात पे घूम रहे या अल्लाह, हमने टूटे हुए फूटे हुए रोजे रखे जिनमें झूठ और रियाकारी थी या अल्लाह ताला, हमने ऐसे रोजे रखे जिनमें ना आंखों की हिफाजत की, ना जुबान की, ना कानों की या अल्लाह ताला, तू हमारी कमियों को जानने वाला है, हमने कुरान पढ़े लेकिन उन पे अमल नहीं किया या अल्लाह, हमारे दिल हसद से नफरतों से भरे रहे या अल्लाह, हमारे अंदर कीने हम एक दूसरे को देख के हसद करते हैं, एक दूसरे से नफरतें करते हैं या अल्लाह ताला, एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, बेईमानियां करते हैं या अल्लाह ताला, हमें माफ कर दे यार, हम रहीमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम, यार हम रहीमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम, रब्बे ग़फ़िर वरहम, रब्बे ग़फ़िर वरहम, या अल्लाह तुम हमें माफ कर दे, हम पे रहम फरमा दे, हमें माफ कर दे, हम पे रहम फरमा दे, जो बीमार है उनको शिफाए कामला जलाता फरमा दे, जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको शहादत के मरतबे अता फरमाना, उनकी बख्शिश फरमा देना, जो उनके पीछे रह गए हैं या अल्लाह उनको सब्रे जमील अता फरमाना, या अल्लाह आने वाला रमजान हमें सेहत सलामती के साथ आफियत के साथ अता फरमा दे, उसमें वो इबादत हमसे करा लेना जिससे तू राजी होता हो अल्लाह ताला, उसमें हमें सुस्ती और काहली से महफूज रखना। या अल्लाह सुस्ती और काहली से महफूज रखना, या अल्लाह बुखल से हम सबको महफूज रखना, या अल्लाह दिल के फिर जाने से हम सबको महफूज रखना, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबुना अला दीनी खाना, तू दिलों को फेरने वाला है अल्लाह, हमारे दिल को अपने दीन पे जमा दे, अपनी इताअत पे जमा दे या अल्लाह, तू इताअत के काम हमसे ले लेना, ऊपर वाला हाथ दिए रहने या अल्लाह, नीचे वाला हाथ ना देना या अल्लाह, हमेशा ऊपर वाला हाथ दिए रखना, रिस्के हलाल अता फरमाना, जिनके रोजगार के मसले हो गए हैं, जिनके काम कारोबारों में मसले हो गए हैं, वो कमियां हो गई हैं अल्लाह, तू बरकत वाली रोजी उनको अता फरमा या अल्लाह, उनके रिस्क में बढ़ावा अता फरमा दे, बरकत अता फरमा दे, खैर अता फरमा दे, उनके नुकसान को पूरा फरमा दे या अल्लाह, जिसका जो जो भी नुकसान हुआ अल्लाह तू उसको पूरा फरमा दे, ऐसी नागहानी आफात से हमेशा हमें महफूज रखना, हादसात से महफूज रखना या अल्लाह, हमारी मस्जिदों को दोबारा आबाद फरमा दे या अल्लाह, मस्जिदों को खुलवा दे या अल्लाह, ताला मस्जिदें खुलवा दे या अल्लाह, हमें तौफीक दे, हमारे मर्दों को तौफीक दे कि मस्जिदों को आबाद करने वाले बने या अल्लाह, हमारे नौजवानों को हयात आ फरमा दे या अल्लाह, शिर्क से निफाक से बिदात से हम सबको महफूज रख या अल्लाह, हमारे दिल मुनाफिक हो चुके हैं, हम मुंह से कलमा पढ़ते हैं और हमारे दिल जो है उसमें निफाक भरा हुआ है या अल्लाह, निफाक को दूर करके ईमान को मजबूत फरमा दे, हमें पक्के सच्चे मोमिन बना दे, मुत्तकीन का इमाम बना दे, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों की ईमानों की हिफाजत फरमाना या अल्लाह, इनके ईमानों की हिफाजत फरमाना या अल्लाह, हमारी औलादों के नेक नसीब फरमाना या अल्लाह, हर बला से इनको महफूज रखना, दुनिया की भी और आखरत की भी, हर शर से महफूज रखना या अल्लाह, दीन दुनिया आखरत की कामयाबियां देना, नियमतें देना, सरबुलंदियां देना, इज्जतें देना, खुशियां अता फरमाना इनको या अल्लाह, ताला तो हर हासिद की हसद से महफूज रख, हर नजर बद से महफूज रख या अल्लाह, ताला हर आने वाले वक्त की में आने वाली बलाओं से महफूज रख या अल्लाह, फितने दिज्जाल से महफूज रख और हर किस्म के फितने से हम सब के घरों को महफूज रख, हमें तौफीक दे के हम अपने घरों में दीन को जिंदा कर लें या अल्लाह, हमें ये तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह, ताला हमें वापस अपने घर आने की सआदत नसीब फरमा दे, वापिस अपने घर आने की सआदत नसीब फरमा दे, बड़ा दिल दुखता है वो सेहत देख के जो अब खाली है, इसमें रमजान में इतना हजूम होता था कि चलने की जगह नहीं थी, हमने इतने गुनाह किए कि आज तूने वो बंद कर दिया, हमारे लिए बंद कर दिया या अल्लाह, ताला उसको खोल देना हमारे लिए या अल्लाह, हमारी माफी फरमा दे, हमारे माफी फरमा दे या अल्लाह, हमें माफ कर दे, मन्नते करते हैं, हमें माफ फरमा दे अल्लाह, तो गफूर नहीं अल्लाह, तो बड़ा है, हम तो बहुत छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं या अल्लाह, हम बहुत हकीर है, तू बड़ा है या अल्लाह, तू हमें माफ कर दे कि बड़ा तो छोटों को माफ कर देता है, तू माफी अता फरमा दे, हमारी बख्शिश कर दे, हम सबकी बख्शिश कर दे, हमें अपनी जिंदगी संवारने की तौफीक अता फरमा अल्लाह, जो हमारी कमियां कोताहियां हैं उनको हमें दिखा दे ताकि हम अपनी सलाह कर सके अल्लाह, तू हमें हमारे दिल में तौफीक अता फरमा कि हम अपनी सलाह कर ले, जिंदगी को संवार ले, इससे पहले कि हम तेरे पास आए अल्लाह, तेरी मुलाकात करें उससे पहले हमें हमारी जिंदगी संवारने की तौफीक अता फरमा दे, मरते दम कलमा नसीब फरमा देना, जानकनी के अजाब से बचाना, खबर के अजाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना अल्लाह, फुल सिरात आसान कर देना, तेजी से गुजार देना या अल्लाह, जहन्नम की आग की झलक भी ना दिखाना, आसान हिसाब किताब लेना मालिक, आसान हिसाब किताब लेना या अल्लाह, हम बहुत फकीर है, बहुत छोटे हैं, हमारे जो अमाल है वो कुछ भी नहीं है या अल्लाह, हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम तुझे दिखाए या अल्लाह, तू जो उस दिन सवाल करेगा कि क्या लेकर आए हो तो हमें क्या जवाब देंगे, हमारे पास कुछ है नहीं, सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ना तू हमारी आस को ना तोड़ना, हमारी आस को ना तोड़ना, तू हमारा आसरा है, ना तू हमारा सहारा है, तू हमारी आस ना तोड़ना यार। तू हमें माफ फरमा दे, उस दिन भी हमारी पर्दापोशी फरमाना, मेरे रुसवाइयों से बचाना, मेरे रुसवाइयों से बचाना। या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, या अल्लाह कुल इंसानियत को मुसीबत से निकाल दे, या अल्लाह सब पे रहम फरमा दे। अल्लाह ताला जो भी है तेरी ही मखलूक है, तेरे ही बंदे हैं या अल्लाह, कोई तुझे माने या ना माने है तो तेरा ही बंदा है या अल्लाह ताला, तो सबको माफ कर दे, सब पे रहम फरमा दे। या अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए अपनी उम्मत के लिए जो दुआएं की हमारे हक में कबूल और मंजूर फरमा ले, जिन चीजों से उन्होंने पनाह मांगी अल्लाह तू हमें पनाह अता फरमा दे। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अत्तस्समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अत्तत्तवाबुर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन, برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب